الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنون إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم سورہ انعام کی تفسیر پڑھا کرتے ہیں، معارف القرآن کی جلد نمبر 3 میں سے، اور آیات نمبر 108 سے لے کر کے 113 تک کا جو مجموعہ ہے معارف القرآن کے اندر، تو اس کی ہم خلاصہ تفسیر پڑھ رہے تھے. ابھی جو تلاوت کی گئی آیات وہ 111، 112 اور 113 تھیں، کیونکہ باقی کی خلاصہ تفسیر پچھلی کلاس کے اندر پڑھ چکے تھے. تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ تم لوگ جو ہے وہ ان کے جو جھوٹے معبود ہیں، جو بت ہیں، ان کو تم لوگ گالیاں مت دیا کرو، برا بھلا مت کہا کرو، ورنہ یہ لوگ اپنے بے ادبی میں، بغیر علم کی یعنی اپنی جہالت میں اور بے ادبی کے ساتھ، اللہ رب العزت کو بھی اسی طریقے سے نعوذ باللہ گالیاں دینا شروع کر دیں گے. اور اس کے آگے کہ ہم ایسے ہی ہر امت کے لیے یا ہر گروہ کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر کے ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. یعنی دنیا کی زندگی میں تو ایسے ہی چلتا رہتا ہے کہ لوگ اپنے کاموں کو اچھا سمجھتے رہتے ہیں، اور پھر جب وہ مر کے ہمارے پاس آئیں گے، ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، تو اس وقت جو ہے نا وہ اصل حقیقت ان کو دکھا دی جائے گی. اور یہ لوگ قسمیں کھا کر کے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کے بڑی ہی زور و شور کے ساتھ، کہ اگر یہ آیت، یہ نشانی آ جائے نا ہمارے پاس، تو ہم ضرور بالضرور ایمان لے آئیں گے، یعنی نبی کو اللہ کا نبی مان لیں گے. تو آپ ان سے کہہ دیجئے، تم لوگ ان سے کہہ دو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے، یعنی صحابہ کرام سے کہہ دیجئے کہ نشانیاں دکھانا یہ تو اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن تم لوگوں کو اس بات کا شعور نہیں ہے. وما یشعرکم، تم اس بات کو نہیں سمجھتے ہو کہ انہا اذا جاءت لا یؤمنون، تم اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہو. کہتے ہیں تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اگر یہ نشانیاں آ بھی جائیں گی نا، تو یہ لوگ ایمان نہیں لے کر کے آئیں گے، یہ لوگ پھر بھی بات نہیں مانیں گے اللہ کے نبی کی. اور ہم اس طریقے ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، جیسے کہ یہ پہلی دفعہ جو نشانیاں دکھائی گئی تھیں ان پر ایمان نہیں لے کر کے آئے تھے. ٹھیک ہے، تو جیسے انہوں نے الٹا کام کیا تھا، تو ویسے ہی ہم بھی الٹا کام کریں گے ان کے ساتھ، کہ ان کے دلوں کو بھی پلٹ دیں گے اور ان کی آنکھوں کو بھی پلٹ دیں گے. اور آپ چھوڑ دیجئے اور ہم چھوڑے رکھیں گے ان کو ان کی اس بدماشی میں، طغیانہم، ٹھیک ہے، ان کی اس سرکشی میں، جس کو ہم عام طور پہ بدماشی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ان کو جو ہے نا وہ چھوڑے رکھیں گے کہ وہ अंधे ही भटकते रहे, क्योंकि हम तो उनकी आंखों को पलट देंगे ना, तो अब उनकी आंखें जो हैं वो हकीकत को देखने के काबिल ही नहीं रहेंगी, तो वो अंधे ही भटकते रहेंगे अपनी इस तोहयानी के अंदर, ठीक है, अपनी इस सरकशी की हालत में ही उनकी सारी जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन ये उनकी जिद की वजह से ही होगा, ये जुल्म नहीं होगा उनके ऊपर कि उन्होंने तो कोई बुरा काम नहीं किया और हमने उनकी आंखों को पलट दिया, ऐसा नहीं होगा, बल्कि उन तक हमने निशानियां भी पहुंचाई, उन तक हमने अपने अपनी किताब भी पहुंचाई, अपने पैगंबर को भी पहुंचाया, और फेर फेर करके उनको समझाने की भी कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने बात मान करके नहीं दी। तो अब इसकी सजा के तौर पर हम उनसे बात मानने की सलाहियत ही छीन लेंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा कि बाकी मानदा जिंदगी ये भटकते फिरेंगे। और आगे फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, वलो अन्ना नज़लना इलैहिम अल-मलाइका, अगर इनके ऊपर ना, अगर हम नाजिल कर देते हैं इनके ऊपर फरिश्ते भी, और इनसे कब्रों के अंदर मौजूद मुर्दे भी कलाम करना शुरू कर देते, यानी इनके बाप दादा जो है ना वो आकर के इनसे बातें भी करना शुरू कर देते कब्रों से निकल करके, हत्ता कि इनके सामने हर चीज ही आ जाती, हशरना अलैहिम, और हम हर चीज ही को उनके सामने लाके खड़ा कर देते ना, मा कानून यूमिनू, फिर भी ये लोग ईमान नहीं लाते। तो अब यहां पर हम तो सुन रहे हैं ना कुरान मजीद की का तर्जुमा सुन रहे हैं और खुलासा तफसीर भी सुन रहे हैं कि ये लोग ईमान नहीं लाते, ये लोग ईमान नहीं लाते, ये लोग ईमान नहीं लेकर के आएंगे, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हमारे हमें ये बात जो है ना वो रजिस्टर नहीं हो रही होती। रजिस्टर होना ये अंग्रेजी का एक मुहावरा है जिसका मफहूम ये बनता है कि ये हमारे जहन में उतर नहीं रही वाली बात, ये बात दिलों में उतरना तो बहुत दूर की बात है, ये इवन हमारे दिमागों में बात ये सिमा नहीं रही, समूह नहीं रही हमारे दिमाग के अंदर ये बात कि ईमान नहीं लाएंगे, ईमान नहीं लाएंगे, ये इतनी अहम बात, ये कौन सी बात है भाई, ईमान नहीं लाएंगे, ये क्या कह रहे हैं कि इतना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और हम जो है वो इनके सामने फरिश्तों को लाके खड़ा कर देंगे, और सारे के सारे जो है वो मुर्दा लोग आकर के इनसे बातें करना शुरू हो जाएंगे। तो व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, क्या बात हो रही है कि ईमान नहीं लाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सी यानी इतनी अहम बात, इतनी अहम बात, तो हम तो चूंकि हम तो उस प्रोसेस से नहीं गुजरे ना, ठीक है, कि हमने ना किसी को देखा, ज्यादातर तो हमने किसी को देखा भी नहीं है कि वो पहले काफिर था और फिर वो ईमान लेकर के आया, और हम जो है वो अक्सर हम में से तकरीबन सारे ही हम में से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, तो हम भी उस प्रोसेस से नहीं गुजरे कि पहले हम जो है वो काफिर थे और फिर बाद में हम जाकर के ईमान लेकर आए, ठीक है। तो इस वजह से ना ये जो बात ईमान लाने की है ये बार बार रिपीट तो हो रही है, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो हमें रजिस्टर नहीं हो रही होती। तो इसके लिए एक सादा सी मिसाल जो है ना वो इस आज इसके जहन में आ रही थी, तो मैंने कहा चले वो आपके सामने बयान कर देते हैं, ठीक है, कि ये ऐसे ही है कि जैसे ना आपका बच्चा, ठीक है, खवातीन की क्लास है तो अक्सर जो है वो खवातीन बच्चे वाली भी होती हैं, या ये कि अगर नहीं भी हैं, छोटी उम्र भी है, अभी औलाद नहीं भी हुई, तो फिर भी उन्होंने अपने घरों के अंदर देखा होता है ना कि अम्मी अब्बू होते हैं और अम्मी अब्बू के जो है वो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो खुद भी इस फेज से गुजर चुकी हैं जब वो बच्चा थी, ठीक है, छोटी, मैं मतलब लड़कियों की बात कर रहे हैं, और बाकियों के तो माशाल्लाह अपनी औलादें भी मौजूद हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ ये चीज होती है ना कि बच्चा जो है ना वो माँ बाप की बात माने, ठीक है, माँ बाप की बात माने जो वो कह रहे हैं ना उसको करने के लिए, तो वो उसको करे, लेकिन अगर वो नहीं करता है ना वो वाली बात जो कि अम्मी उसको करने के लिए कह रही हैं या अब्बू उसको करने के लिए कह रहे हैं, तो ये चीज फिर बड़ी गिरा गुजरती है माँ बाप के ऊपर, बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है बात की, ये हमारी बात क्यों नहीं मान रहा, ठीक है। तो बात मानना कि माँ बाप को सही मानों में बड़ा समझ करके उनको इस काबिल समझ करके कि हाँ ये जो बात हमें कह रहे हैं ये बात सही है और हमारे फायदे की बात है, उनकी बात मानना, ठीक है, माँ बाप को बड़ा समझ करके और उनकी बात को जो है वो फायदे की चीज समझ समझ करके उसको मान लेना, यही ईमान लाना है, ठीक है, यही ईमान लाना है, एतमाद करना, ठीक है, माँ बाप पर एतमाद करना। तो अब अगर हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता, हमें बड़ा नहीं समझता, हमें इस काबिल नहीं समझता कि वो हमारी बात को जो है वो अहमियत दे, फौकियत दे, तो वो चीज हमारे लिए कितनी अहम हो जाती है ना। तो घरानों के अंदर इवन अपने सगी औलाद के साथ जो है वो लड़ाई फसाद शुरू हो जाता है, ठीक है, कि भाई मेरी बात क्यों नहीं मानता, अपनी औलाद के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है, अपनी औलाद के साथ जो है वो बदमजगी शुरू हो जाती है कि मेरी बात नहीं मानती है, मेरी बात नहीं मानता ये, ठीक है, हत्ता के कभी किसी दूसरे के पास जाते भी है ना, तो वहां पे जाकर के भी शिकायत करते हैं, किसी दूसरा जैसे किसी शेख के पास चले गए या किसी जो है वो खानदान के बुजुर्ग के पास चले गए, तो वहां जाकर के भी माँ बाप फिर शिकायत करते हैं कि वैसे तो बड़े अच्छे हैं लेकिन ये मेरी बात नहीं मानते, ठीक है ना, ये बात नहीं मानता, ये आप कुछ कर दीजिए, आप इनको कुछ कह दीजिए, आप इनको कुछ नसीहत कर दीजिए, ठीक है, कि मेरी बात मानना शुरू हो जाए। तो ये बात मानना जो होता है ना, ये कोई छोटी मामूली बात नहीं होती, ये बहुत अहम बात होती है, खुसूसन उस शख्स के लिए जो कि खालिसतन खैरख्वाही करता हो, किसी की खालिसतन खैरख्वाही करता हो और उसके भले की ही बात कहता हो और उसको 100% पता भी हो कि उसी की बात ही सही है, उसी की बात सच्ची है, उसी की बात फायदेमंद है, और वो देख रहा हो अपने छोटों को कि वो अपने नुकसान के काम करे चले जा रहे हैं, बर्बादी के काम करे चले जा रहे हैं, नुकसान उठाए चले जा रहे हैं, तब ये क्या चाहेगा कि ये मेरी बात मान ले, ये नुकसान से बच जाए, ठीक है, मुझे बड़ा बनाया है अल्लाह ताला ने, मुझे बड़ा बनाया है, मेरे पास मुझे इल्म दिया है, ठीक है, मुझे इनका खैरख्वाह बनाया है, तो अब ये मेरी बात मान ले, ठीक है। तो ये ईमान लाना जो है ना वो ऐसा ही है कि नबी अलैहिस्सलाम बड़े भी हैं इल्म के अंदर, उम्र में तो सबसे बड़े नहीं थे, बहुत सारे नबी अलैहिस्सलाम से उम्र में भी बड़े थे लेकिन इल्म में नबी अलैहिस्सलाम सबसे बड़े थे और अल्लाह ताला की तरफ से उनको हकीकत का जो है वो इल्म दिया गया था और जो उनकी कौम थी वो बर्बादी के कामों के अंदर लगी हुई थी, नुकसान के कामों के अंदर लगी हुई थी। तो सबसे अहम चीज उनके लिए क्या थी, उन लोगों के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी कि वो नबी अलैहिस्सलाम को बड़ा मान ले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना शुरू कर दें, ठीक है। ये ऐसे ही है कि यानी लग रहा है ना कि देखें बार बार ये बात चल रही है ना, जिसको हम उर्दू में जुबान में कहते हैं यार पीछे ही पड़ गए हो तुम इस वाली बात के, इस बात के पीछे ही पड़ गए हो, ईमान लाना, ईमान लाना, ईमान लाना, ठीक है। तो एक तो बात मानने वाली मिसाल आपको दी ना, ठीक है, और दूसरा बात मानने के अंदर भी जो है ना वो जो सबसे अहम बात होती है, उन्होंने अपना मैसेज में भी लिखा है कि जी मैंने ऐसा रियलाइज किया है जब मैं अपने छोटे से कहती हूं तब, है ना भाई, आपने आपने रियलाइज किया और सबने ये रियलाइज किया, सारी अम्माओं का यही होता है, ये मेरी बात नहीं मानते, ठीक है। तो ईमान लाना, ये बात फिर हम वापस आते हैं अपनी असल बात के ऊपर, कि ईमान लाना जो है ना वो तकरीबन ऐसी चीज है कि जैसे आजकल के दौर के अंदर जो है ना हम अपने बच्चे के लिए कि भाई ये पढ़ ले, ये स्कूल में जाकर के किसी तरीके से पढ़ ले और अच्छे ग्रेड्स लेकर के आ जाए, ठीक है। अब वो जब बच्चा जो है ना वो अच्छे ग्रेड्स नहीं लेकर के आ रहा होता ना, तो हम हथियार नहीं डालते, हम गिव अप नहीं करते कि चलो कोई बात नहीं, नहीं लेकर के आ रहा अच्छे ग्रेड्स तो छोड़ दो भाई, बल्कि हम उसके पीछे पड़े रहते हैं, क्यों, इसलिए कि हमें इस बात का यकीन होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सही यकीन होता है या गलत यकीन होता है, ये नहीं, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि हमें आमतौर पर इस बात का यकीन होता है कि अगर इसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आए, अगर ये पढ़ लिख करके इतने इसने जो है वो दर्जे पास नहीं किए, तो इसकी जो है ना वो करियर नहीं बनेगा, इसका इसका जो है वो जिंदगी इसकी खराब हो जाएगी, ये कहीं का नहीं रहेगा, ये बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से बच्चा पढ़ के नहीं दे रहा, हम इसको छोड़ते नहीं है, फिर हम उसके पीछे पड़े रहते हैं, लगे रहते हैं किसी ना किसी तरीके से कि भाई वो ट्यूशन लगवाते हैं, इतने पैसे उसके ऊपर खर्च करते हैं, उसके लिए कोई और जो है वो इंतजाम करते हैं, बस किसी तरीके से ये पढ़ ले। क्यों? इसलिए कि ना पढ़ना बर्बादी है हमारे नजदीक, अच्छे ग्रेड्स ना लाना बर्बादी है। अब कोई कहे जिसको के इस बात का इतना शऊर ना हो कि स्कूल के अंदर अच्छे ग्रेड्स लाना जो है यही कामयाबी है, वो समझे कि नहीं भाई इसके अलावा भी कामयाबियां हो सकती हैं, इसके अलावा भी तरीके से जो है वो आपका बच्चा जो है वो अच्छी जिंदगी गुजार सकता है इसके बगैर भी, तो उसको ये बात बड़ी अजीब लगेगी कि आप क्या हर दूसरे जुमले के ऊपर पढ़ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो, ग्रेड्स लेकर के आओ, हर दूसरे जुमले के ऊपर आप ये बात कही चली जा रही है। ठीक है, तो भाई आप तो यकीन करती हैं ना इस बात के ऊपर कि नहीं इसी में कामयाबी है, दूसरे बंदों का समझ में नहीं आ रही तो आपको इसकी परवाह नहीं होती, वो क्या उसको क्या पता कि भाई ग्रेड्स लाना जो है ना वो कामयाबी ही कामयाबी है और ग्रेड्स का नहीं लाना जो है अच्छे वो नाकामी ही नाकामी है। तो आप दूसरे बंदे को इग्नोर कर देती हैं कि वो बेशक आपको जो है वो कुछ कुछ भी समझ रहा हो। ठीक है, तो यही मिसाल इसकी है, ईमान लाना, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर एतमाद करना, नबी अलैहिस्सलाम को नबी मानना और नबी अलैहिस्सलाम की बातों को मानना, इसके अलावा किसी दूसरी चीज के अंदर खैर नहीं है इंसानियत के लिए, इंसान के लिए किसी दूसरी चीज के अंदर कामयाबी नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से ना अल्लाह ताला वो तो ये बात पता है और अल्लाह ताला ही ने तो नबी को भेजा है, तो इस वजह से अपने कलाम में अल्लाह ताला इस तरीके से ये ईमान नहीं लेकर के आएंगे। ये पहले क्यों नहीं ईमान लेकर के आए? पहले ईमान नहीं लेकर के आए तो इस वजह से हम इनके दिलों को भी पलट देंगे, हम इनकी आंखों को भी पलट देंगे, और जो है ना वो हम इनको अपने इनके जो अंधापन है उसके अंदर छोड़ देंगे। ईमान लाना, ईमान लाना। ठीक है, ये पढ़ने आजकल का जो माँ बाप को पढ़ने का है ना, ये उससे भी बड़ी चीज है। तो इल्म हासिल करने का तो ऑफ कोर्स हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ग्रेड्स लाने की बात करें वो तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई है, अल्लाह ताला जो अल्लाह ताला की खुसूसी मदद आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह के पर्चे आउट हो रहे हैं राइट। इस तालीमी निजाम जो कि लॉर्ड मूक आले का बनाया हुआ तालीमी निजाम था, ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ तालीमी निजाम था ना, तो उसके पर्चे आउट होने शुरू हो गए। ठीक है ना, पूरे इतने इतने मुल्कों के अंदर सारे एग्जाम्स उनको कैंसिल करने पड़ रहे। ठीक है, जो जो कर रहे हैं पर्चे आउट वो जो भी कर रहे हैं वो तो हैं इस किस्म के क्रिमिनल किस्म के लोग, लेकिन तालीमी निजाम का तो बेड़ा गर्क हो रहा है ना, और वो होना भी चाहिए, होने की जरूरत भी है उसको। ठीक है, अल्लाह ताला एक निजाम को नीचे उतारते हैं और दूसरे निजाम को ऊपर लेकर के आते हैं, तो इस निजाम को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने नजर आ रहा है कि बस उसके जाने जाने के दौर आ चुके हैं। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, इसी तरीके से ना हम इंसानों के अय्याम को ना उनके दरमियान घुमाते फिराते रहते हैं, एक को नीचे उतारते हैं दूसरे को ऊपर लेकर के आते हैं, तो दूसरे को नीचे उतारते हैं उस पहले वाले को ऊपर लेकर के आते हैं, लेकिन असल चीज तो इल्म है, असल चीज तो समझ है, असल चीज तो फकाहत है। ठीक है, वो तो इंसान की जरूरत है, उसके बगैर तो इंसान कामयाब हो ही नहीं सकता, लेकिन ये जो तालीमी निजाम है उसके हम कोर्स पहले भी ना हक में थे, अब उनके हक में, अब पैर आलम तो तमाशा देख रहे हैं बैठ करके। एनीवे तो ये फरमाया कि वकजालिक जअलना लिकुल नबी अदुवन, और इसी तरीके से ना हमने हर नबी के लिए दुश्मन बनाए, शयातीन अल इंस वल जिन्न, इंसानों और जिन्नों में से जो शयातीन होते हैं वो नबियों के दुश्मन होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था, इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन बहुत से शयातीन पैदा किए थे, कुछ आदमी जिनसे असल मामला था यानी जिनसे दू बदू आमने सामने की लड़ाई होती थी आदमियों के साथ, तो वो इंसानी शक्ल के जिन थे, और कुछ जिन इबलीस और उसकी औलाद। ठीक है, तो जो इबलीस है वो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन वो सामने नजर नहीं आता, वो छुप करके हमला करता है, तो इबलीस और उसकी औलाद यानी जो वो जिन जो कि इबलीस की मान करके चलते हैं, तो वो इबलीस का लश्कर बन जाते हैं। जिनमें से बाजे यानी इब्लीस और उसका लश्कर दूसरे बाजों को यानी काफिर आदमियों को चिकनी चपड़ी बातों का वसवसा डालते रहते हैं ताकि उनको धोखे में डाल दें। यूही बादुहुम इला बादिन, वही करते हैं उनमें से बाज दूसरों को, यानी आपस में एक दूसरे को वो वही करते रहते हैं। वही करने का मतलब यहां पर वही से मुराद वो वही नहीं है जो कि नबियों पर फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम के वास्ते से नाजिल होती थी, वो तो इस्तेलाही वही कहलाएगी या वही का इस्तेलाही मानी कहलाएगा। यहां पर लफ्ज वही जो है वो उसके लफ्जी मानी में इस्तेमाल हुआ। लफ्जी मानी वही का क्या होता है? छुप करके बात करना, सरगोशी के साथ, ऐसे कि किसी दूसरे को पता ही ना चले कि आप उसको क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ना छुप छुप करके बातें एक दूसरे को करते रहते थे।
नहाए
बुखरुफ तर्जुमे के दौरान भी बताया था कि बहुत ही यानी जो बनावटी बातें, सजी बनाई किस्म की बातें, बड़ी देखने में बड़ी अच्छी जो बातें लगती हैं। ठीक है, तो ऐसी बातें जुखरुफ अल कौल, चिकनी चपड़ी बातें, गुरूरा गुरूर कहते हैं धोखे को। तो गुरूरन का मतलब क्या हुआ कि चिकनी चपड़ी बातें जो डालते थे ना वसवसे के शक्ल में डालते थे। वसवसा उसको कहते हैं जो के यानी सुनाई नहीं देता बल्कि ख्याल आता है, उसको वसवसा कहते हैं। और मकसद क्या होता था? धोखे में डालना, गुरूरन। मुराद इससे कुफ्र मुखालफत की बातें हैं कि जाहिर में नफ्स को भली मालूम होती थी कि कोई जरूरत नहीं है इनकी बातें सुनने को, क्या उनकी बातें सुनोगे तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी, तुम्हें जो है वो अपने साहिश की चीजें छोड़नी पड़ेंगी, तुम्हें किसी दूसरे की बात माननी पड़ेगी। तो ये तो बातें नफ्स को बड़ी बड़ी भरी लगती है ना, नफ्स को जो है वो आजादी पसंद है, किसी की बात ना माननी पड़े, ये नफ्स को पसंद है ये वाली बात। तो इस वजह से ऐसी बातें जो हैं वो बड़ी भरी मालूम होती हैं लेकिन बातिन में मोहलिक होती हैं, हलाक करने वाली होती हैं। ठीक है, जाहिरी तौर पर कोई हलाकत ना भी आ रही हो लेकिन बात ना मानना, इससे दिल खराब होता है, दिल गंदा होता है, दिल के ऊपर जो है वो काले काले दाग पड़ते रहते हैं, हद्दा के वो बिल्कुल ही मर जाता है दिल। तो इस वजह से बातिन में ये बातें मोहलिक थी और यही धोखा है। जब ये कोई नई बात नहीं तो इसका गम ना कीजिए। ठीक है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये लोग ऐसे मुआमलात क्यों करते हैं, यानी हमेशा ही हर नबी के साथ शयातीन जो है वो लगे रहे हैं और वो फिर इंसानों में ऐसी बातें करते रहते थे कि नबी की बात ना मानना, नबी की बात ना मानना। तो ये आपके साथ पहली दफा नहीं हो रहा, ये पहले से भी चलता रहा है। तो ये बात क्योंकि नई नहीं है तो अब आप इसका गम ना कीजिए कि आपके साथ ये लोग ऐसे मुआमलात क्यों करते हैं। असल ये है कि इसमें बाज हिकमतें हैं, यानी अल्लाह ताला गोया के नबी अलैहिस्सलाम को बता रहे हैं कि भाई ये जो आपकी बात नहीं मान रहे हैं और ये जो दुश्मन दुश्मन आपकी पीछे पड़े हुए हैं आपके खिलाफ जो है वो ये साजिशें कर रहे हैं, तो इसमें भी हिकमतें, यानी इनके पास हिकमत नहीं बल्कि अल्लाह की हिकमत है इसके अंदर कि ऐसे लोग क्यों ऐसा काम कर रहे होते हैं। इस वजह से उनको ऐसे उमूर पर कुदरत भी हो गई है। और अगर अल्लाह ताला ये चाहता कि ये लोग ऐसे उमूर पर कादिर ना रहें तो फिर ये ऐसे काम नहीं कर सकते। ठीक है, यानी ये जो आपके खिलाफ प्लॉटिंग कर रहे हैं ना, तो अगर अल्लाह ताला चाहे कि ये लोग प्लॉट ना करें तो बड़ा आसान है, अल्लाह ताला इनके जुबानों के ऊपर फालिज डाल दे। ठीक है, तो ये किसी से बात ही नहीं कर सकेंगे, इनके हाथ पैर के ऊपर फालिज गिर जाए। फालिज गिरने में आपको पता ही है, किसी के अल्लाह ना करे किसी के रिश्तेदार के ऊपर फालिज गिरा हो आपके सामने, लेकिन जिसके जिसने देखा है वो एक दिन बंदा बिल्कुल ठीक ठाक होता है, एकदम से उसके ऊपर फालिज का अटैक होता है और वो बिल्कुल मुअत्तल हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, कुछ करने के काबिल नहीं रहता उसके बाद वो। ठीक है, तो इतना आसान होता है बंदे को मफलूज कर देना। ठीक है ना, अल्लाह के लिए कितना आसान है ये वाला काम। तो नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मनों को मफलूज कर देना ये कोई मुश्किल काम की थोड़ी था अल्लाह के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ढील दी हुई थी। ठीक है, और उसमें अल्लाह की हिकमत थी। तो वही इसका जिक्र कर रहे हैं कि मगर बाज हिकमतों से उनको कुदरत दी हुई है, उनको ढील दी हुई है। सो जब इसमें हिकमतें हैं तो उन लोगों को, और जो कुछ ये दीन के बारे में इफ्तिरा परदाजी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि ये दीन तो बिल्कुल बेकार चीज है, ये दीन तो झूठ है, ये दीन तो कोई काम की चीज नहीं है, लोगों को बोलते रहते थे ना इस तरह की बातें, तो ये झूठ बोलते थे दीन के बारे में, इफ्तिरा झूठ गढ़ने को कहते हैं। जैसे इनकार नबुवत जिस पर अदावत मुरतब है, यानी नबी का इनकार करते थे, लोगों को भी बोलते थे कि नहीं ये नबी असल में ये कोई नबी नहीं है, बस झूठ बोल रहे हैं नऊज़ुबिल्लाह। तो जब ये इनकार नबुवत करते थे तो जाहिर है अदावत की वजह से ही करते थे ना, वरना कोई इनके पास अकली दलील कोई थोड़ी थी नबी अलैहिस्सलाम को झूठा बोलने की। अकल तो इस बात पे इनकी कन्विंस थी कि ये शख्स झूठा हो ही नहीं सकता, इसने जिंदगी भर कभी झूठ नहीं बोला, ये तो खालिसतन खैरख्वाह हैं, ये तो खालिसतन अमीन हैं, तो इनकी अकलों को ये बात पता थी। लेकिन इवन अकल के खिलाफ जा करके ये महज दुश्मनी की वजह से ना ये काम करते थे नबी अलैहिस्सलाम की के खिलाफ। तो वही कह रहे हैं कि इनकार नबुवत जिस पर अदावत मुरतब है तो उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर रहने दीजिए, ठीक है। फजरहुम, फजरहुम का तर्जुमा कैसे किया, आप इस इनको रहने दीजिए, ठीक है। वमा यफ्तरू, आप इनको भी रहने दीजिए, यानी इनकी फिक्र गम में ना पड़िए, हम खुद मुतय्यन वक्त पर मुनासिब सजा देंगे, कि इन हिकमतों से एक ये भी है कि हम जो मुनासिब वक्त होगा ना उस वक्त हम इनको सजा देंगे, उस वक्त तक इनको ढील देते रहेंगे, ये अपना काम करते रहें। काफिर जब ये काम करते हैं मुसलमानों के खिलाफ तो ये मुसलमानों के फायदे में होता है, कि मुसलमानों को ना सब्र करने के ऊपर बेहतरीन अजर मिल रहा होता है। अल्लाह ताला ने उसूल बनाया ना, इन्नमा युवफ्फस्साबिरूना अजरहुम बिगैर हिसाब, कि जो सब्र करते हैं उनको बिला हिसाब अजर मिलता है। तो सब्र करने के लिए मुश्किल आएगी तब सब्र करेंगे, ठीक है। तो ये जो अल्लाह ताला की तरफ से मुश्किल आती है किसी के ऊपर तो उसको बिला हिसाब अजर देने के लिए अल्लाह ताला ये निजाम बनाते हैं। हरगिज हरगिज इसकी दुआ नहीं मांगनी है कि ए अल्लाह मेरे ऊपर कोई ऐसी मुसीबत डाल दीजिए नऊज बिल्ला कि जिसके ऊपर मैं सब्र करूं फिर मुझे जो है वो बगैर हिसाब अजर मिले, हरगिज इसकी दुआ नहीं मांगनी मांगनी है। क्यों नहीं मांगनी, क्या भाई सवाब हमें नहीं चाहिए जो हम ऐसी दुआ ना मांगे, ठीक है। जब सब्र करेंगे और फिर हमको बिला हिसाब अजर मिलेगा तो अच्छा है, अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह आप जो है वो मुसीबत डाल दें, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद ये भी दुआ में कोई कहे कि हाँ मुसीबत डालने की तो दुआ नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन इसकी तो दुआ मांग सकते हैं ना कि अल्लाह मुसीबत भी डाल दीजिए और सबर की तौफीक भी दे दीजिए, मुसीबत भी डाल दीजिए और सबर की तौफीक भी दे दीजिए, ताकि हमें जो है ना वो आपके वादे के मुताबिक बिला हिसाब अजर मिल जाए, ठीक है। क्या ख्याल है, ऐसी दुआ नहीं मांगनी चाहिए फिर, पूरी दुआ मांग लें ना, अगर खाली ये दुआ ना मांगे कि मुसीबत मिले, बल्कि ये भी दुआ मांग लें कि मुसीबत भी मिले सब्र की तौफीक भी मिले और फिर उसके बाद अल्लाह का वादा तो सच्चा है, तो अल्लाह ने तो अपने वादे को पूरा करना है तो मुझे बिला हिसाब अजर तो मिलेगा। लेकिन मौलवी साहब कह रहे हैं कि नहीं मांगनी चाहिए ऐसी दुआ, क्यों क्यों नहीं मांगनी चाहिए, ये हम आपसे सवाल कर रहे। मुसीबत मांगने से का मसला नहीं है, हम तो आपसे कुछ और पूछ रहे हैं कि मुसीबत भी मांगे सवाब की तौफीक भी मांगे तो इसमें क्या बुरा है भाई, भाई अल्लाह ताला सवाब वो सबर की तौफीक दे देंगे फिर तो वारे नहीं आ रहे हो जाएंगे उसके बाद में। क्या इसका जवाब है, एक जवाब आ तो रहा है, लेकिन वो आप मेरा सवाल समझ नहीं रही, इस वजह से आप जवाब सही नहीं दे रही। जो अल्लाह बिना मुसीबत के सवाब दे सकता है, उससे मुसीबत क्यों मांगे? भाई खाली मुसीबत को थोड़ी मांग रहे हैं, अल्लाह से खाली मुसीबत को थोड़ी मांग रहे हैं। अल्लाह ताला से मुसीबत और सबर का की तौफीक भी मांग रहे हैं, ठीक है? मुसीबत और सबर की तौफीक दोनों मांग रहे हैं। तो हम सवाल आपसे जो कर रहे हैं ना, उस सवाल को तो पहले समझें, ठीक है? अल्लाह ताला से मुसीबत खाली नहीं मांग रहे, बल्कि सबर की तौफीक भी मांग रहे हैं। और बड़े अल्लाह ताला के वादे पर एतमाद करने की वजह से ये बात मांग रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वादा फरमाया, इन्नमा युवफ्फा सबिरून अजरहुम बगैर हिसाब, ठीक है? तो कितनी अच्छी बात है ना, मतलब तीनों बातें बड़ी जबरदस्त बातें हैं कि अल्लाह के वादे पर एतमाद करके अल्लाह ताला से जो है वो मुसीबत मांग रहे हैं, और फिर जो है वो सबर की तौफीक भी मांग रहे हैं, क्योंकि जाहिर अल्लाह के वादे पर एतमाद इतना है हमें, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं। कुरान से इसकी दलील मिलती है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन का मा हमलतहु अला अल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। माशाल्लाह, ये बड़ा अच्छा जवाब दिया भाई। और कोई जवाब? हम कमजोर हैं बहुत भाई, अल्लाह ताला तो कमजोर नहीं है ना, हम कमजोर हैं ना, लेकिन अल्लाह ताला तो सब्र की तौफीक दे सकता है ना, फिर क्या मसला है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ऐसी दुआ मांगने से मना फरमाया है, इसलिए नहीं मांगनी चाहिए, ठीक है? बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही फरमाया, ठीक है ना? ये है उसकी वजह, ठीक है? ये है इसकी वजह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दुआ मांगने से मना फरमाया है, इसलिए ऐसी दुआ नहीं मांग, इसलिए ऐसी दुआ नहीं मांग, ठीक है? और इसके ऊपर मजीद अगर आप कहें कि अच्छा भाई ये तो हदीस होगी, तो अब हदीस जो है वो पता नहीं, हदीस जो है वो सही है, ज़ईफ़ है, क्या नहीं है, तो भाई कुरान मजीद में भी तो है, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लदीन मिन कब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताकत लना भी, ठीक है? आप हमें जो है वो किसी मुसीबत में ना डालें। अम्बिया ऐसी दुआ मांग रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया ऐसी दुआ मांगने से, बस दिस इज इट, ये काफी है हमारे लिए, ठीक है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हमेशा आफियत मांगो, ठीक है? आफियत मांगनी है। अब मेरी बात आप लोगों को समझ में आई ना, तो आपने सही जवाब भी दे दिया, ठीक है? तो देखें, अपनी अकल साइड पे रखें, नबी अलैहिस्सलाम की बात को तरजीह दें, ये है हमारा दीन, ठीक है ना? अपनी अकल को साइड पे रखो। देखो कुरान की आयत है, इन्नमा युवफ्फा सबिरून अजरहुम बगैर हिसाब, लेकिन इस कुरान मजीद की आयत को अपनी अकल से मत समझने की कोशिश करो, इसकी अपनी तफसीर बनाने की कोशिश ना करें कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि मुसीबत आएगी तो फिर मैं सबर करूंगा तो फिर जो है मुझे बिना हिसाब अजर मिलेगा। नहीं, ये अपनी अकल से तफसीर नहीं करनी है, अपनी अकल से नहीं समझना है, ठीक है? बल्कि नबी अलैहिस्सलाम की बात माननी है, दीन नबी अलैहिस्सलाम की बात मानने का नाम है, ठीक है? और नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी दुआ मांगने से मना किया है, आफियत की दुआ मांगने का हुक्म किया है, ठीक है? तो असल बात ये सारी क्या थी कि भाई इंसान की अकल उसको धोखा देती है, बल्कि शैतान उसको धोखा देता है जब वो अपनी अकल के ऊपर रिलाय करना शुरू कर देता है, और नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात को पसे पुश डाल देता है या कम दर्जा देना शुरू कर देता है वो, ठीक है? हालांकि कुरान भी, कुरान की आयत भी जो है नबी अलैहिस्सलाम की बताई हुई आयत है ना, लेकिन भाई उसकी तफसीर क्या है, तो उसकी तफसीर जो है फिर वो उलमा से पूछनी होगी, क्योंकि देखें हदीस मुबारका का जो इल्म है ना, ये इतना वसी इल्म है, इतना वसी इल्म है कि हदीस में क्या क्या बातें हैं कि ये एक आम आदमी नहीं, उसके पास नहीं होता ये इल्म, ये तो उलमाए कराम के पास होता है। हदीस का इल्म इतना तफसीली इल्म है, इतना कुछ है हदीस के लिटरेचर के अंदर कि आम आदमी इसका इहाता नहीं कर सकता। हाँ, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ सकता है आम आदमी, कुरान मजीद की तिलावत भी कर सकता है, कुरान मजीद की जो है वो तर्जुमा याद भी कर सकता है। हाफिज हाफिज जो बनते हैं वो कोई जरूरी थी नहीं कि आलिम दीन भी हो, एक बच्चा भी हाफिज बन सकता है, एक बूढ़ा भी हाफिज बन सकता है। तो कुरान मजीद को तो पढ़ा भी जा सकता है, हाफिज भी बना जा सकता है, उसका तर्जुमा भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन हदीस मुबारक के अंदर नहीं, उसको तो पढ़ना भी किसी आम बंदे के लिए मुमकिन नहीं है। इतनी तफसील है हदीस के, भाई नबी अलैहिस्सलाम के रोजे मर्रा के मामलात हैं वो, जिनको के हदीस के अंदर रिकॉर्ड किया गया है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चीजें हुई, तो भाई ये कितना तफसील है इसके अंदर। तो जब तो तफसीली उलूम हासिल करने वाला ही आलिम दीन होता है, पार्ट टाइम बंदा कोई थोड़ी आलिम दीन होता है। ठीक है, तो कुरान मजीद को जब तक हदीस की रोशनी में ना समझा जाए ना, उस वक्त तक नहीं समझ, सही बात समझ में नहीं आती। ठीक है, तो बेशक कुरान मजीद में ये आयत मौजूद है, इन्नमा युवफ्फा सबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, लेकिन उसकी तफसीर नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों और नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों की ऑफकोर्स तशरीहात भी जो उलमाए कराम ने की हैं उनकी रोशनी में जब समझेंगे तब बात समझ में आएगी कि करना क्या है असल में। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर कहाँ तो पहुंच जाते हैं कि आप इनके ताकि इस पर वो शयातीन आदमी काफिरों को इसलिए वसवसे में डालते थे ताकि इस फरेब आमेज बात की तरफ उनके कुलूब मायल हो जाएं, जो आखिरत का जैसा चाहते हैं जैसे चाहिए यकीन नहीं रखते। ठीक है, यानी आखिरत पर इनमें से बहुत से लोग जो है ना वो यकीन रखते थे कि मरने के बाद की भी एक जिंदगी है, जैसे यहूदी इस बात पे यकीन रखते हैं, ईसाई इस बात पे यकीन रखते हैं कि मरने के बाद भी एक जिंदगी है, और मुशरिकीन में भी कुछ थे जो कि मरने के बाद की जिंदगी का इनकार नहीं करते थे, लेकिन जैसा हकीकत है कि मरने के बाद हिसाब किताब होगा और जालिम को जो है वो उसकी सजा दी जाएगी, इस पे यकीन नहीं रखते थे। ठीक है, तो समझते थे कि हाँ मरने के बाद की जिंदगी होगी तो उसके अंदर और मजे आएंगे और अय्याशियां होंगी हमारी, जैसे इस दुनिया में अय्याशियां हैं वैसे ही मरने के बाद भी अय्याशियां अय्याशियां होंगी अगली जिंदगी के अंदर भी। तो भाई ये नहीं है आखिरत ना कि आपको जो है वो अय्याशियों में रखने के लिए अल्लाह ताला ने आखिरत बनाई है, बल्कि आपका तो हिसाब किताब हो गया। तो इस वजह से फरमाया कि जो आखिरत पर जैसा चाहिए वैसा यकीन नहीं रखते, मुराद काफिर लोग हैं अगरचे अहले किताब हो, क्योंकि जैसा चाहिए उनको भी यकीन नहीं है ऐसा, वरना इनकार नबूवत पर जिस पर कयामत में सजा होगी कभी जुर्रत न। ठीक है, अगर वाकई उनको इस बात का यकीन होता ना कि हाँ भाई जजा सजा होनी है, तो वो कभी भी इनकार नबूवत पर जुर्रत ना करते, और ताकि मैलान नफसानी के बाद उसको एतकाद कलबी से भी पसंद कर लें। फरमाया ना कि वाले तस्वा इलैहि अफइदा तू, ताकि इस तरफ उनके दिल मायल हो जाए, किन के दिल, अल्लदीन ला युमिनून बिल आखिरा, उन लोगों के दिल जो कि आखिरत पर ईमान नहीं लेकर के आते, यानी नबी ने जो आखिरत के बारे में बताया है उसको नहीं मानते, वली यरदौहु, ताकि वो उससे राजी हो जाए खुश हो जाए, यानी जो ये उल्टी हरकतें कर रहे हैं तो दे बिकम प्लीज विद देम अपनी उल्टी हरकतों से, अपनी बुरी बातों से, वली यकतरिफू, और वो कर गुजरे, यकतरिफू और वो कर भी गुजरे, मा हुम मुख्तरिफू, जो बुरे काम ये कर रहे हैं ना उनको एक्चुअली वो कर गुजरे, ठीक है, परपेट्रेट कर लें अपने क्राइम्स को, जिन क्राइम्स की तरफ इनका मूड तो बन रहा है ये एक्चुअली कर गुजरे भी उनको। जैसे होता है कि एक शख्स जो है वो नाउज बिल्ला गुनाहों की माहौल में रह रहा होता है, तो वो गुनाह करने वालों को देख देख करके जो है ना वो उसका दिल चाहता है कि मैं भी ये काम करूं, मैं भी शराब पीऊं, मैं भी जो है वो म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाऊं, मैं भी ये करूं, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा होता बस। ठीक है, लेकिन जब दिल की तमन्ना बढ़ती है ना तो अल्लाह ताला फिर जो है ना वो उसको गुनाह का मौका भी दे देते हैं, कोई ना कोई सबब बन जाता है ताकि वो कर भी ले वो गुनाह। ठीक है, तो गुनाह का दिल में ख्याल पैदा हो जाना, इसके ऊपर सजा नहीं मिलती आखिरत की। ठीक है, किसी गुनाह का ख्याल दिल में पैदा होना, इसके ऊपर डायरेक्टली अल्लाह ताला ने सजा नहीं रखी कि बस ख्याल पैदा हो गया अब जो है वो सजा मिलेगी, नहीं, बल्कि दिल में गुनाह का ख्याल पैदा हो जाने के बाद जब इंसान गुनाह करता है ना, तब फिर उसको सजा मिलती है। ठीक है, तो जो इतना तुला हुआ होता है ना फिर गुनाह के लिए, तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए असबाब पैदा कर देते हैं ताकि वो गुनाह कर भी ले, और जब वो गुनाह कर लेता है तो फिर उसके ऊपर सजा वाजिब हो जाती है। तो यहां पर भी यही मामला है, लियरदौहु वलियक्तरिफ मा हुम मुक्तरिफ। किसी को सवाल पूछना हो तो पूछ लेगा यहाँ पे चैट रूम में लिख करके, फिर हम मारूफ मसाइल थोड़ा पढ़ना शुरू कर देते हैं कि इसमें फरमाया कि मस्तूरा आयात में से पहली आयत एक खास वाकये में नाजिल हुई, और इसमें यानी इसका शान नुजूल एक खास वाकया है, और इसमें एक अहम उसूली मसले की हिदायत दी गई है कि जो काम खुद करना जायज नहीं उसका सबब और जरिया बनना भी जायज नहीं। ठीक है, यानी ये आयत नाजिल तो बस एक पर्टिकुलर वाकये के बाद नाजिल हुई ना, लेकिन कुरान मजीद में तो फिर किस्से कहानियां तो नहीं है ना खाली कि भाई वाकया हुआ फिर उस वाकये के ऊपर जो है वो आयत नाजिल हो गई, तो बाद में आने वाले मुसलमान जो हैं वो वाकयात पढ़ेंगे और उनकी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा कि अच्छा ये भी हुआ था, अच्छा ये भी हुआ था, तो इस ये तो फिर बुक ऑफ हिस्ट्री हो गई ना, तारीख की किताब हो गई बस ये। नहीं, ये तारीख की किताब तो नहीं है, ये बुक ऑफ हिस्ट्री तो नहीं है, ये तो बुक ऑफ हिदायत है। तो हिदायत कैसे मिलेगी? जब हम उसूल को समझेंगे कि भाई उस वाकये में क्या उसूल जो है वो खिलाफ वर्जी हो रही थी उसकी, और अल्लाह ताला ने फिर किस उसूल से उस उसूल को समझाया, उस उसूल की खिलाफ वर्जी को समझाया कि नहीं ऐसे नहीं। ठीक है, तो उसूल समझ समझ में आना ताकि हम 1400 साल गुजरने के बाद भी हम अपनी जिंदगी में अल्लाह की रजा को नाफिज कर सकें। ठीक है, अगर उसूल नहीं समझ में आएगा तो अल्लाह ताला की मर्जी तो हम नहीं पा सकेंगे ना, फिर तो हमें वाकयात पता चलेंगे लेकिन हमारी जिंदगी में तो कोई फर्क लाने का सवाल ही पैदा नहीं होगा फिर। ठीक है, तो उसूल क्या है? वो ये मसला है कि जो काम खुद करना जायज नहीं है उसका सबब और जरिया बनना भी जायज नहीं है। ये वाकया तफसील से तो हम बाद में ही पढ़ेंगे क्योंकि अभी आज की क्लास का टाइम तो तक मुकम्मल हो गया है, लेकिन ये चीज, ये उसूल हमारी जिंदगी में अप्लाई कैसे होता है, खुसूसन हम लोग जो बहुत गलती करते हैं आजकल इंटरनेट के इस्तेमाल के अंदर, फोन के इस्तेमाल के अंदर, कि हम ऐसी चीजें जो है ना वो एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहते हैं कि जिनके अंदर गुनाह का मवाद होता है। ठीक है, तो जैसे उसके अंदर बेपर्दा औरत की तस्वीर, बल्कि पर्दा हो या ना पर्दा हो औरत औरत है ही क्यों, उस वीडियो के अंदर जिसको कि आप जो है वो दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं, अब उसको कोई मर्द देखेगा, कोई नामहरम उसका दायरा, उन औरतें जो कि इंटरनेट के ऊपर हैं, जो यूट्यूब के ऊपर हैं, तो वो जब किसी मर्द के पास वो वीडियो जाएगी तो वो मर्द उसका महरम तो नहीं होगा ना, तो जब गैर महरम उस औरत को देखेगा तो उस गैर महरम को उसको गुनाह मिलेगा। ठीक है, उस मर्द को गुनाह मिलेगा, तो कौन सबब बना इसका? वो जिसने के फॉरवर्ड किया इस यूट्यूब की वीडियो को। उसी तरह म्यूजिक की वीडियोस आती हैं, ठीक है, तो म्यूजिक की जो वीडियोस होती हैं वो हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, तो भाई जो शख्स फिर म्यूजिक को सुनेगा तो उसको जो गुनाह मिलेगा तो उस गुनाह का सबब हम बने हैं, तो हमने भी तो नाजायज काम किया ना। ठीक है, तो इस बारे में बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है आजकल, खुसूसन इस चीज के ऊपर शयातीन की सबसे ज्यादा मेहनत हो रही है इस बात के ऊपर कि म्यूजिक को जो है ना वो एक्सेप्टेबल बना दिया जाए, आम बना दिया जाए। ये तो पहले ही एक्सेप्टेबल थी, म्यूजिक तो पहले ही जो है वो एक्सेप्टेबल थी, तो अब कौन सी मेहनत हो रही है जो ये कह रहे हैं कि अब इसके ऊपर मेहनत हो रही है? तो चले आपसे पूछते हैं ताकि आप आपकी कुछ समझ का अंदाजा हो कि आप इतना अवेयर है दुनिया में क्या हो रहा है इस वक्त। भाई म्यूजिक तो पहले से ही लोगों के नजदीक एक्सेप्टेबल थी, तो आज क्या मेहनत हो रही है इसके ऊपर, कौन सी नई मेहनत हो रही है उसको एक्सेप्टेबल बनाने की, उसको काबिल कबूल बनाने की, आज कौन सी मेहनत हो रही है फिर? जी ओ, ये आपने क्या सवाल करिए। स्टूडेंट्स क्रेडिट लोन ले सकते हैं, उसमें भी इंटरेस्ट लगता है पर बहुत कम लगता है। ये क्या बात हुई, कम लगता है? इंटरेस्ट कम लगता हो या इंटरेस्ट ज्यादा लगता हो, इंटरेस्ट तो हराम है। तो लोन जो है ना वो क्रेडिट के ऊपर लेना, चाहे वो स्टूडेंट्स लें, चाहे चाहे टीचर लें, चाहे कोई भी ले, लोन लेना तो जायज नहीं है। उसके लिए कोई और ऑल्टरनेटिव इंतजाम करें। अगर लोन के बगैर गुजारा नहीं है तो उस लोन का फिर किसी और जरिए से इंतजाम करें, ठीक है? क्रेडिट बेस्ड लोन जो है वो जायज है, सूद सूद की वजह से, ठीक है? तो सवाल जो किया था कि आजकल कौन सी मेहनत हो रही है म्यूजिक को काबिल कबूल बनाने की, म्यूजिक की किसी ना किसी शक्ल को जायज करार करने की मेहनत चल रही है, किसी ना किसी शक्ल को जायज करा देने की मेहनत चल रही है। ये क्या बात है भाई, म्यूजिक म्यूजिक होती है। अच्छा, आपकी बेटी ने आपको मना किया था कि अम्मी पीछे मौसीकी बज रहा है, म्यूजिक बैकग्राउंड, बैकग्राउंड म्यूजिक, दीनी लेक्चर के पीछे भी म्यूजिक ऐड होती है जी, हलाल म्यूजिक। म्यूजिक भाई, म्यूजिक को हलाल करना है, हलाल म्यूजिक तो हलाल म्यूजिक मतलब म्यूजिक म्यूजिक होती है ना, तो ये तो पहले से करीबी थी ना, ठीक है? अच्छा, पहले जिन्हों के दरमियान म्यूजिक एक्सेप्टेबल थी ना, तो वो लोग होते थे कि जिनको के हलाल और हराम का कुछ पता ही नहीं होता था, या उनको कोई फिक्र ही नहीं होती थी कि हलाल क्या चीज होती है, हराम क्या चीज होती है, ठीक है ना? अब जिन लोगों में म्यूजिक को काबिल कबूल बनाया जा रहा है, ये वो लोग हैं कि जिनको के हलाल हराम का पता है, या जिनको हलाल हराम की फिक्र है। तो वो तबका जो है ना, वो पहले म्यूजिक से बचा हुआ था, अब उस तबके के अंदर म्यूजिक को दाखिल किया जा रहा है, और बड़ी अल्लाह रहम करे लगता ऐसा है कि बड़ी कामयाबी के साथ दाखिल किया जा रहा है, ठीक है? कि किस तरह दाखिल किया जा रहा है, बयान के साथ, बयान के बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रही है, नात म्यूजिक के साथ, कोई नात जो नई रिलीज हो रही है म्यूजिक के बगैर रिलीज नहीं होती, इल्ला माशाल्लाह कोई होगा अल्लाह का बंदा जो कि नात रिकॉर्ड करवाए अपनी बगैर म्यूजिक के, ठीक है? वोकल्स को यूज करना, वोकल्स इज म्यूजिक, ठीक है? ये वोकल्स जो है ना, जो वो बेवकूफी की भी कोई हद होती है हर चीज के ना, जिस तरह वही बात होती है शरिया कंप्लाइंट वीडियो गेम्स है ना, वीडियो गेम्स के अंदर शरिया कंप्लाइंट वीडियो गेम्स लेकर के आ रहे हैं, तो भाई इसको बेवकूफी की हद के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है? तो उसके अंदर फिर वो नहीं अजीब बेवकूफी के फतवे डालते हैं उसके अंदर कि नहीं, ये आप किसी को हराम नहीं कह सकते, और बंदे खुदा का खौफ करो यार कुछ। तो म्यूजिक के बारे में भी ऐसे तमाशे चल रहे हैं, वोकल जो है ये म्यूजिक नहीं है, मुंह से अगर म्यूजिक बनाया जाए तो वो म्यूजिक नहीं है ना, सारा का सारा इफेक्ट उसका म्यूजिक का है, और उसके बिना पर जो है फिर आप हर चीज के अंदर म्यूजिक डाल रहे हैं वोकल्स के नाम के ऊपर, और पीछे पता भी नहीं होता कि वाकई वोकल से भी हो रही है कि वो जो है वो साज से हो रही है, तार से हो रही है, ठीक है? तो ये भोलापन जो है ना, ये भोलापन के नहीं, जी वोकल्स जो है वो हलाल हैं, उनसे कुछ नहीं होता, ये इसको या तो शैतानियत कहा जाएगा कि आप दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं, या आप इसका आप इसको आपका इंतहा दर्जे का भोलापन कहा जाएगा कि आपको समझ ही कुछ नहीं है कि आपका दुश्मन कौन है और वो क्या करना चाहता है आपके साथ, ठीक है? तिलावत के अंदर, तिलावत के साथ जो है वो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाई हुई होती है, किसी अल्लाह के वली का इंतकाल हो जाए, अब उसके इंतकाल के ऊपर सोगवार क्लिप्स आ रही हैं और उन क्लिप्स के अंदर म्यूजिक है, किसी शेखुल हदीस का कि शहादत हो जाए, अभी अभी चंद दिन पहले जो है वो एक बहुत बड़े शेखुल हदीस, हदीस के पढ़ाने वाले, उनको जो है वो शहीद किया गया। जितनी वीडियोस आ रही हैं उनकी शहादत से मुतालिक, सब के पीछे म्यूजिक, राइट? सब के पीछे म्यूजिक, और पश्तों में म्यूजिक, पठानों के तो और ये हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं ना, क्योंकि उनको पता है पठानों में सबसे ज्यादा दीन, हमारे मुआशरे के अंदर सबसे ज्यादा दीनदार कौन है, पठान है। तो उनके अंदर से दीन को निकालो किसी ना किसी तरीके से। तो पठानों के तो हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं किसी तरीके से, ऊपर से इनके उलमा को शहीद कर दो और नीचे से जो है ना इनके उलमा, छोटे जो उलमा है ना, उनको म्यूजिक में लेकर के आओ, उनको म्यूजिक के बारे में बिल्कुल बेफिक्र कर दो कि भाई हजरत शहीद का जो वीडियो है उनके बारे में, उनके उनकी तालीमात के बारे में जो वीडियो है वो तो अब देखेंगे ही, अपने बड़े बुजुर्ग की तालीमात की वीडियो तो देखेंगे ही, उसके अंदर म्यूजिक डाल करके फॉरवर्ड करो आगे। अब जो है वो तालिबे इल्म साहब हैं, हदीस के तालिबे इल्म हैं, हदीस के उस्ताद को जो है वो बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, तो अब उनकी तालीमात की जो है वो जो वीडियो देखेंगे, म्यूजिक साथ साथ सुन रहे होंगे, ठीक है, म्यूजिक से नहीं बच सकेंगे। तो ये हो रहा है इस वक्त, ठीक है, और उनको अंदाजा नहीं है कि ये म्यूजिक के रास्ते से शैतान क्या काम करता है। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम बता चुके हैं, लेकिन उसको तावीलात बना देते हैं उसकी, नहीं, उस तरह की म्यूजिक कोई थोड़ी है कि जिससे जो है वो गुनाह के ख्याल पैदा होते हों, जिससे फिस्क का ख्याल पैदा होता हो। इसमें तो हदीस है, इसमें तो कुरान की तिलावत है, तो फिस्क का ख्याल कैसे पैदा होगा? अल्लाह के बंदे, ये तो और बड़ा फिस्क है कि जिसमें तुम कुरान की तिलावत के साथ जो है म्यूजिक को डाले हो, ये तो उससे भी ज्यादा बड़ा फिस्क है जो कि बगैर कुरान की तिलावत के म्यूजिक का बैकग्राउंड होता, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा और बहुत तेजी के साथ ये चीज हो रही है, बहुत तेजी के साथ ये चीज फैलाई जा रही है, और बिल्कुल बेफिक्र होकर के इन चीजों को हम आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। क्या लिखा मैं समझ, गुनाह का एहसास खत्म करने की मेहनत, बल्कि उसको जायज बना देना, ठीक है। तो इस बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत है, और बताएं भी लोगों को कि ये जो कर रहे हो ना, ये बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो, ठीक है। डिजिटल तस्वीर भी जरूरत के लिए जायज है, लेकिन उसको गलत इस्तेमाल कर लें जी। म्यूजिक तो जरूरत के लिए भी जायज नहीं है ना, डिजिटल तस्वीर तो पासपोर्ट के लिए या किसी और चीज के लिए जायज है, या पासपोर्ट के अंदर तस्वीर डालनी है, ठीक है, तो वो आप उसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल ये मसला जो है वो हमने बस आज पढ़ लिया, अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह अगले सफ़े से फिर पढ़ना शुरू करेंगे। अल्लाह ताला बात की समझ और की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दुआ अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।